चेतावनी भाग पहला, बचन चौदवां, शब्द चौथा। करो री कोई सत्संग, आज बनाए। करो री कोई सत्संग, आज बनाए। नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न आए।
सत्संग के ये वचन हजूर महाराज जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद हैं। ये श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप संतों महात्माओं की तलीम या उपदेश के बारे में, मालिक की भक्ति के बारे में हर पहलू से प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि किसी भी महात्मा की वाणी को खुले दिल से खोज करना शुरू करें तो यही समझ में आती है कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है। कोई भी महात्मा संसार में कभी कोई कौम या मज़हब बनाने के लिए नहीं आता, ना ही महात्मा हमारे हाथों में डंडे या तलवारें देने के लिए आते हैं। वह केवल हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आज़ाद करवाकर वापस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। आम तौर पर ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के चले जाने के बाद हम दुनिया के जीव बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। हम उनके इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपने पेट की खातिर करता है, कोई मान बढ़ाई के लिए करता है। जिन महात्माओं की तालीम सारी दुनिया के लिए होती है, जब हम उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करते हैं तो आप खुद ही विचार करके देखें कि हम उन परमात्मा के भक्तों व प्यारों के साथ इससे ज़्यादा और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं। महात्मा तो सारी दुनिया के लिए आते हैं और सारी दुनिया को एक ही उपदेश देते हैं। स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुन्द्र के कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंस गए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लस्तों का आशिक है। जो जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए हम सब जीवों को बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने इस दुनिया को कर्मा संदड़ा खेत कहकर बयान किया है। इस जमीन के अंदर जो बीज बोते हैं उसी फसल को काटने के लिए जाना पड़ता है। अगर कोई मिर्ची का बीज बोता है तो मिर्च की फसल इकट्ठी करता है। कोई आम के पौधे लगाता है, वह आम का फल खाता है। ऋषियों मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहकर समझाया है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। अगर नेक कर्म करते हैं तो उनका नतीजा भोगने के लिए वापस यहीं आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो हमारे लिए नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, हम सब दुनिया के जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। हम ये जानते ही हैं कि इन कर्मों के कारण जिस जामे में भी जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है, उस जामे में हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हर एक जामे में हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। नीचे के जामों के बारे में तो क्या सोचना है, इंसान के जामे के बारे में अच्छी तरह विचार करके देखें। जिस जामे को हम सृष्टि का सरताज कहते हैं, जिसे मुसलमान फकीरों ने अशरफुल मफलूकात कहकर समझाया है, जिसे ऋषि मुनि नर नारायणी देह कहते हैं, इस देह में भी हम कौन से सुख भोग रहे हैं, कौन सी शांति प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी है तो कोई बीमारी के हाथों तंग है। किसी के संतान नहीं है, वह दिन रात तड़प रहा है। कोई बाल बच्चों के हाथों तंग आया हुआ है। किसी ने कर्जा देना है, किसी ने कर्जा लेना है। अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनो। सड़कों पर जाकर कंगालों की हालत देखो। जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानियां सुनो। दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। कभी रेडियो ऑन करके देखें, अखबार पढ़कर देखें, ये कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी में ये दुर्दशा रहती है कि हम रोटी कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं, आप विचार करें कि उस जामे और नगरी में बैठकर हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करेगी, इसका देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, पिर सच्चे ते सदा सुहागण। आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा उसका पति है। जब आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति के चरणों में पहुंच जाती है तो ये हमेशा के लिए सुहागन हो जाती है। इसका मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई। मालिक की भक्ति की महिमा का तो बयान ही नहीं किया जा सकता। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी की भक्ति करते हैं। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों मजहबों मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है, लेकिन ये शक्लें और पदार्थ असल में हमारी भक्ति और पूजा के काबिल नहीं हैं। स्वामी जी महाराज आगे समझाएंगे कि इनकी भक्ति और पूजा हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। कौन सी चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है? सिर्फ एक अकाल पुरुष है, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हैं। उसकी भक्ति करके हम परमात्मा का ही रूप बन जाते हैं और वापस जाकर परमात्मा में ही समा जाते हैं। ये जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये 84 का एक बहुत बड़ा जेलखाना है। इस जेलखाने में से निकलने का परमात्मा ने एक दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद वह मालिक हमें ये मौका बख्शता है कि हम इससे लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से आज़ाद हो सकें, मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, 84 लाख जौन सभाई, मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। परमात्मा ने दुनिया की रचना करके उसे 84 लाख योनियों में बांट दिया है। बढ़ाई किसे बख्शी है? इंसान के जामे को। क्या बढ़ाई बख्शी है कि ये इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर हम कोशिश करेंगे तो छत पर चढ़ जाएंगे, पैर फिसलेगा तो नीचे गिर जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इंसान का जामा पाकर हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। हमें उस मंजिल मकसूद की खोज करनी है, उस रूहानी सफ़र को तय करने की कोशिश करनी है। अगर हम इस मौके को अपने हाथ से खो बैठेंगे तो पता नहीं ये इंसान का जामा मिले मिले, ना मिले ना मिले, या कहीं ऐसी जगह जाकर जन्म मिल जाए जहां भूले भटके भी हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर ना जा सके। इसलिए परमात्मा ने हमें ये जो मौका बख्शा है, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए।
नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस यौसर फिर मिले न आए, तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए।
स्वामी जी फरमाते हैं कि हम दुनिया में फंसकर उस परमात्मा को बिल्कुल भूल चुके हैं। बाल बच्चों, यारों दोस्तों, रिश्तेदारों, कौमों, मुल्कों, मेज़बों, दुनिया की जायदादों, हाट वेलियों, ठाट बाट में हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इन चीज़ों ने हमारा साथ नहीं देना है। इनमें ना आज तक किसी को कभी सुख और शांति प्राप्त हुई है, ना हो सकती है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख दिखाई देते हैं, यह भी समय पाकर दुखों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ आकर गर्जों का प्यार है, इनमें से कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। हम देखते हैं कि मौत के समय सगे संबंधी हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। किसी को ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आते किस ओर से हैं और हमें कान से पकड़कर किधर ले जाते हैं। जिन्हें ये भी पता नहीं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं, वह बेचारे हमारी मदद और सहायता क्या कर सकते हैं। इनके साथ तो हमारा लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। जिस प्रकार स्टेज पर आकर सब एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का पार्ट अदा करता है, कोई रानी का, तो कोई विलेन का, लेकिन जिस समय वह अपना पार्ट अदा करके स्टेज से उतर जाते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई विलेन। इसी प्रकार ये दुनिया एक बहुत बड़ी स्टेज है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई स्त्री का पार्ट अदा कर रहा है, कोई पति का, कोई बच्चों का और कोई यारों दोस्तों का। लेकिन हम अपना पार्ट अदा करते हुए भूल जाते हैं कि इन सब के साथ हमारा केवल लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। हम इनको असल समझकर अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ये हमारे बनते नहीं और हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इनमें तुम्हें कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इनका और हमारा आरजी साथ है। इनमें तुम्हें केवल आरजी सुख ही मिल सकता है। आप देखें, जब हमारी शादी होती है तो मन में कितना चाव पैदा होता है। अगर उसी साथी के साथ खटपटी शुरू हो जाए, सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे होते हैं, हम कितनी खुशियां मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। वही बच्चे कभी नालायक निकल आते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी परमात्मा उन्हें वापस बुला लेता है, तो वही संतान हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं, लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन आप हिस्ट्री पढ़कर देख लें कि उन्हीं नेताओं को हम गोली का शिकार बना देते हैं, फांसी के तख्तों पर लटका देते हैं, जेल खानों में बंद कर देते हैं, अखबारों में उनकी मिट्टी पलीत करना शुरू कर देते हैं। जिसे सुख का कारण समझे बैठे थे, वह आहिस्ता आहिस्ता दुख का कारण बन जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इन सब में तुम्हें कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर इनमें कभी सुख या शांति प्राप्त होगी तो उस समय होगी जब हमारी लिव, हमारा ख्याल मालिक की भक्ति और प्यार में लगेगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर बाजार में जाता है। उसे बाजार में हर चीज़ बहुत सुंदर दिखाई देती है। कहीं बिजलियों की रोशनियां हो रही हैं, कहीं खिलौने रखे हैं, कहीं मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं। बच्चा समझता है कि ये खुशी उसे बाजार के साजो सामान से मिल रही है। अगर कहीं गलती से वह अपने पिता की उंगली छोड़ बैठता है तो बाजार का सारा साजो सामान वहाँ होते हुए भी बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर महसूस करता है कि बाजार में वह खुशी सिर्फ उतनी देर ही प्राप्त कर सकता था जब तक उसके पिता की उंगली उसके हाथ में थी। हमारा पिता कौन है? वह वाहेगुरु है, अकाल पुरुष है, परमात्मा है। जब तक हमारी लिव, हमारा ख्याल उस परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगा हुआ है, तब तक इन बाल बच्चों में भी सुख मिल जाता है, कौमों, मजमों, मुल्कों की मान बढ़ाई में भी सुख मिल जाता है। अगर हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख रूप बन जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि इनमें से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, तुम कभी इनके प्यार में से शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें, जिनको परमात्मा ने सब कुछ बख्शा हुआ है, नेक संतान भी दी है, सेहत भी दी है, रुपया पैसा और मान बढ़ाई भी दी है, लेकिन फिर भी कभी अकेले में बैठकर देखें, हमारे मन में खुशी नहीं होती, किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती रहती है। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की ओर। जब तक ये अपने असल की ओर जोर नहीं मारती, उस ओर नहीं जाती, तब तक हमारी आत्मा कभी सुखी नहीं हो सकती, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए गुरु नानक साहब ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर बयान किया है। पत्नी जब भी सुख प्राप्त करती है, अपने पति के प्रेम, प्यार और चरणों में जाकर ही प्राप्त कर सकती है। अगर कोई स्त्री अपने पति के चरणों से दूर चली जाती है, तो आप उसे दुनिया की जो मर्जी नियामतें दे दें, उसके मन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आप धन दौलत में सुख ढूंढ रहे हैं, इनमें से आज तक ना किसी को सुख मिला है और ना मिल सकता है। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो वह केवल परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार में से मिल सकता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, जिन्नी कर जाता अपना से सुखी है पाई, कि जो लोग वापस अपने घर चले जाते हैं, वह हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमारा घर वही है जहाँ परमात्मा रहता है। इसलिए जब तक आत्मा परमात्मा के घर नहीं पहुंचती, ये कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकती।
तेरी आसुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, या से बचो गहो गुर सरना, सत संग में तुम बैठो जाए।
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस दुनिया और इसके पदार्थों, दुनिया के रिश्तों की असलियत का तब पता चलता है जब हम गुरुमुखों की संगत करते हैं। तब पता चलता है कि इनके साथ हमारा केवल लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। दरिया में बहुत सी लकड़ियां बहती हुई चली आ रही हैं। एक लहर उठती है, इन सब लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। दूसरी लहर उठती है, इन सबको बिखेर देती है। इसी प्रकार कर्मों की लहर उठती है, हम सब यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं। कर्मों की दूसरी लहर उठती है, हम सब अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, तो कोई बच्चा बनकर आ गया। कईयों का साथ हम छोड़कर चले जाते हैं, कई हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। आज हम पिछले जन्मों के जो रिश्तेदार हैं, बेटे बेटियाँ हैं, उनको भूले बैठे हैं, उनका सुख दुख महसूस नहीं करते। जिनके लिए आज भटकते फिर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये कब तक हमारा साथ देने वाले हैं? महात्मा ये नहीं कहते कि तुम इन सब को छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर दौड़ जाओ। महात्मा तो कहते हैं कि हमें दुनिया में इनके साथ रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया की असलियत को समझने की कोशिश करनी है। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई नैसाने, सुरत शब्द पावसागर तरिये, नानक नाम बखाने। फरमाते हैं कि जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, लेकिन जब वह उड़ती है सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी के अंदर होती हैं, लेकिन फूल पानी से बाहर रहता है। इसी प्रकार हमें दुनिया में रहते हुए अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़कर हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाना है। अगर एक मधुमक्खी शहद के किनारे बैठती है, तो वह शहद की लज्जत भी ले लेती है और सूखे परों से उड़ भी जाती है। लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए, तो उसके पंख लिबड़ जाते हैं, वह शहद की लज्जत भी नहीं ले सकती और तड़प तड़प कर मर जाती है। इसी प्रकार हमें मालिक की भक्ति करते हुए, सुरत शब्द का अभ्यास करते हुए, दुनिया में लेन देन का हिसाब भी खत्म करना है और अपना भी कुछ बनाकर जाना है। लेकिन इन सब बातों की समझ हमें कहाँ जाकर आती है? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरुमुखों की संगत और उनके सत्संग में जाकर ही इन बातों का पता चलता है। हमारा मन संगत का बड़ी जल्दी असर लेता है। अगर बुरी संगत करते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार पैदा होने लगते हैं। आप चोरों की संगत करेंगे तो चोरी करने की आदत पड़ जाएगी। 10 दिन शराब पीने वालों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। इसी प्रकार जब हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करते हैं, वह परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनको देखकर हमारे मन में भी मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी उपदेश करते हैं, साकत नर प्राणी सद पूखे नित पूखन पूख करी जय, तावत ताए ताए प्रीत माया लख कोसन कोविथ दीजे। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो साकत या मनमुख लोग हैं वह सदा भूखे ही रहते हैं, उनके मन में कभी सबर या संतोष नहीं आता। परमात्मा उनको कितनी ही दौलत क्यों ना दे दे, कितनी ही अच्छी सेहत और दुनिया की मान बढ़ाई क्यों ना दे दे, उन्होंने आज तक परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा। आप फरमाते हैं कि ऐसे जीव जो हमेशा दुनिया के पदार्थों के पीछे पीछे भागते हैं, भटकते और तड़पते फिरते हैं, क्या कभी उनकी संगत करनी चाहिए? गुरु साहब कहते हैं लख कोसन को विथ दीजिए कि उनसे कम से कम 1,00,000 कोस दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। किनकी संगत करनी चाहिए? गुरु रामदास जी फरमाते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर त्याय है परमात्मा, ऐसे साधुओं संतों महात्माओं अपने प्यारों और भक्तों की संगत दे जिनसे तेरा पता चले, तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए। यही उपदेश कबीर साहब देते हैं। कबीर संगत साध की जौकी पूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर हमें सूखे टुकड़े भी खाने पड़ें तो मनमुखों की संगत में जाकर खीर हलवा आदि पकवान खाने से वे लाख दर्जे अच्छे हैं, क्योंकि एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। अगर हम एक घड़ी आधी से भी आधी घड़ी गुरमुखों की संगत में बिताते हैं तो हमारे मन से हजारों प्रकार के भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। पता नहीं महात्मा की वाणी की कौन सी तुक हमारे कानों में पड़ जाए जो हमारी जिंदगी को पलट दे। यही मौलाना रूम फरमाते हैं, हम नशीनी सायते बा औलिया, बेहतर अज सद साला तायत बेरिया। मालिक के औलिया या भक्तों की एक घड़ी की संगत मन बुद्धि द्वारा की गई 100 साल की भक्ति से अच्छी है। अगर रास्ता पूर्व की ओर है और हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं तो जितना दौड़ते हैं उतना ही अपने मंजिल मकसूद से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि गुरमुखों की संगत करनी चाहिए, जिनकी संगत में जाकर पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज़ की है, और हमारे और परमात्मा के दरमियान जो बजर कपाट लगे हुए हैं उन्हें अपने रास्ते से हम दूर कैसे कर सकते हैं।
या से बचो गहो गुर सरना, सत संग में तुम बैठो जाए, यह सब खेल रैन का सुपना, मैं तुमको अब दिया जगाए।
जब हम संतों महात्माओं की मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत करते हैं तो पता चलता है कि जिस दुनिया को हम दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके साथ हमारा इतना मोह या प्यार है, जिसके लिए हम दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं, ये तो रात के सपने की तरह है। जब रात में सपना आता है उस समय हमें सपने की हर चीज़ असली मालूम देती है। हम सपने में दुख भी महसूस करते हैं, सुख भी महसूस करते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन ये कब पता चलता है कि सपने की कोई असलियत नहीं है? जब हम सोए हुए जाग उठते हैं। इसी प्रकार जब हम सतगुरु की संगत में आते हैं तो जन्मों जन्मों से सोए हुए जाग उठते हैं। जिस दुनिया को हम सारी उम्र अपना बनाने की कोशिश करते थे उसमें से हमारा ख्याल निकल आता है, और जिस परमात्मा को हम भूले बैठे थे हमारे मन में उसके मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब नाशवान है, फना है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी है, हर बिन सब कुछ मैला संतो, मालिक के स्वाय सब कुछ मैल है, कूड़ है, नाशवान है, इन सब ने तेरा साथ छोड़ देना है। इसी प्रकार हम आशा की वार में पढ़ते हैं, कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। ये जो हमारा शरीर है ये भी कूड़ है, इसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। मैं आगे जाकर अर्ज करूंगा कि जिस दुनिया के साथ हम मोह या प्यार किए बैठे हैं वह भी कूड़ है, उसने भी हमारा साथ छोड़ देना है। ये शरीर रूपी कूड़ दुनिया रूपी कूड़ के साथ प्यार किए बैठा है, उस परमात्मा को भूले बैठा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि सारी दुनिया की ओर नजर मारकर देख लो, कोई चीज आपकी दोस्ती, आपकी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं। हर चीज ने आपका साथ छोड़ देना है। केवल परमात्मा है, अकाल पुरुष वाहेगुरु परमेश्वर है, जिसने सदा रहना है। जपजी साहब की पहली पौड़ी में गुरु नानक साहब कहते हैं, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे अनुभव में केवल एक ही चीज ऐसी आई है जो आज जुगाद से सच चली आ रही है। सच से भाव है जो कभी नाश या फना नहीं होती। वह कौन है? परमात्मा है, परमेश्वर है। वह परम पिता परमात्मा सतयुग में भी था, त्रेता और द्वापर में भी था, आज भी वही है और आगे भी हमेशा उसी को रहना है। ये नहीं कि पहले गद्दी किसी और के पास थी और आगे किसी और के पास चली जाएगी। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल जो तिसे त्याएंदा। केवल एक परमात्मा है जो निश्चल है, जो कभी मरण जन्म के दुखों में नहीं आता। जो लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जिस दुनिया के साथ हम मोह या प्यार किए बैठे हैं, इसमें से किसी ने भी हमारा साथ नहीं देना है। इसने आज तक किसी का साथ नहीं दिया। बड़े बड़े राजा, महाराजा और डिक्टेटर, जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, जिनके मुंह से निकलते ही लफज कानून बन जाता था, आप देखें कि दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। उनकी खोपड़ियों को आज हम किस तरह ठोकरें मारकर गुजरते हैं, उनकी कब्रों को किस तरह नफरत की नज़र से देखते हैं। उनकी मिट्टी आज हमारी आंखों का सुरमा बनी हुई है, उड़ उड़कर हमारी आंखों में पड़ रही है। हम उस समय को भूले बैठे हैं जिस समय हमारी मिट्टी को भी लोगों की आंखों का सुरमा बनना है, हमारी खोपड़ियों और हड्डियों को भी लोगों के पैरों के नीचे आना है। लेकिन हम समझते हैं कि मौत तो शायद दूसरों के लिए है, हमारे लिए भोग विलास हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े हैं। हम दिन रात इंद्रियों के भोगों में, इन शक्लों और पदार्थों में इतना उलझे हुए हैं कि दुनिया के मोह या प्यार में इतना फंसे बैठे हैं कि और तो और हम अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, एक एक के साथ जाकर उन्हें शमशान भूमि में भी छोड़कर आते हैं, लेकिन अपने मन में ये कभी नहीं सोचते कि वह दुनिया में से कौन सी चीज़ को साथ में लेकर गया है और हम दुनिया में से कौन सी चीज़ को साथ ले जाएंगे। महात्मा उपदेश देते हैं, मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाओगे, कि जीव इस संसार में मुट्ठी बांधे आता है और मुट्ठी खोल कर चला जाता है। ये सब कुछ देखते हुए भी हम दुनिया के मोह लोभ और प्यार में फंसे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि भाई, अच्छी तरह अपनी आंखों के आगे उस समय और घड़ी को रख कर देख जब किसी चीज़ ने तेरी मदद या सहायता नहीं करनी है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आवण्या। नाम के स्वाय, मालिक की भक्ति के स्वाय किसी को भी तेरा साथ नहीं देना है, कोई चीज़ तेरे साथ नहीं जाएगी। और तू जब भी मुक्ति प्राप्त कर सकेगा तो शब्द की कमाई द्वारा, नाम की कमाई द्वारा ही प्राप्त करेगा। गुरु साहब समझाते हैं कि केवल संतों द्वारा दिए हुए सच या नाम का दान है, शब्द या नाम की बख्शिश है, जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी ये जो कुछ भी परमात्मा ने बख्शा है, ये सब बख्शिशें यहीं रह जाती हैं। इन्होंने आज तक किसी का साथ नहीं दिया, इसलिए महात्मा हमारे मन को ठोकर मारकर समझाते हैं कि हमें इस ओर से अपने प्यार या मोह को निकालना चाहिए और परमात्मा की खोज करनी चाहिए।
ये सब खेल रैन का सपना, मैं तुमको अब दिया जगाए, झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए।
स्वामी जी महाराज अब और भी खोलकर बयान करते हैं कि जितना भी आज हमारा दुनिया के साथ तअल्लुक या संबंध है, अच्छी तरह सोचकर देखें, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, ये बाल बच्चे, यार दोस्त, सगे संबंधी, कौम, मज़हब और मुल्क सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस समय हमारा शरीर से संबंध टूट जाता है, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाता है। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाते हैं, जब वह शरीर ही हमारा नहीं रहता, तो दुनिया की कौन सी चीज़ ने हमारा साथ देना है? हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने श्वास परमात्मा ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़ जाना है। ये आज तक किसी के साथ न गई है, न किसी के साथ जा सकती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि हमें चाहिए कि हम इस शरीर से कुछ काम ले लें। क्या काम लेना है? ना तो इस देह को इतना दुख देना है कि इसमें बैठकर परमात्मा की भक्ति ही ना कर सकें, और ना इतना सुख देना है कि परमात्मा की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही ना जाए और हम परमात्मा की भक्ति ही ना कर सकें। असली काम ये है कि परमात्मा ने हमें यह इंसान का जामा अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा है। हम देह में बैठकर उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उल्टे दिन रात देह की मान बढ़ाई और अहंकार में फंसे रहते हैं। ज़रा सोच कर देखें कि हम अहंकार किस चीज़ का करते हैं, गरूर किस चीज़ का करते हैं। जवानी का अहंकार करते हैं, क्या हमें किसी का बुढ़ापा नज़र नहीं आया? सुंदरता या खूबसूरती का अहंकार करते हैं, क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की शक्लें नहीं देखीं? हमें हुकूमत का नशा है, कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं देखा? धन दौलत का गुरूर है, राजों महाराजाओं को, सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़कों पर रुलते नहीं देखा? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। तुम अहंकार किस चीज़ का करते हो? क्या जिस्म का अहंकार करते हो? इससे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाना है। फिर तुम्हें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। तुम्हारी ख्वाहिशों, इच्छाओं और कर्मों के अनुसार जहाँ भी वह मुनासिब समझेगा, तुम्हें वहीं जाकर जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारे लिए पहले ही तैयार होता है। अभी उस देह में आते ही हैं कि मौत पहले ही आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह हमेशा हथकड़ी लगी ही रहती है। कबीर साहब फरमाते हैं, माटी कहे कुम्हार को, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तोहे। कुम्हार मिट्टी को गूंद गूंद कर उसके बर्तन बनाता है, लेकिन मिट्टी कहती है, कभी तूने उस समय के बारे में भी सोचा है जब मैंने तुझे भी अपने अंदर गूंद लेना है? फिर फरमाते हैं, लकड़ी कहे लोहार को, तू क्या जारे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोहे। लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी कहती है कि भाई, कभी उस वक़्त को भी अपनी आंखों के आगे रख कर देख जब मैं तुझे साथ लेकर तेरे भी इसी तरह कोयले बना दूंगी। लोग सोचते हैं कि मौत लोगों के लिए है, हमारे लिए भोग विलास हैं, शराबों कबाबों की लस्तें हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, ये तन है कागज़ की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। जिस प्रकार कागज़ की पुड़िया पर पानी डालो तो वह बिल्कुल गल जाती है, इसी तरह जिस देह में बैठकर हम इतना अहंकार करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, हमारे इस शरीर को भी कागज की पुड़िया की तरह गल जाना है, आग के स्पुर्द होकर जल जाना है या मिट्टी के स्पुर्द होकर गल जाना है। कबीर साहब फरमाते हैं कि अगर हम देह में बैठकर परमात्मा की भक्ति नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, तो हमें अंत समय पछताना पड़ेगा कि हमने अपने कीमती वक़्त को फजूल की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं झूठी काया, कि हमारी काया झूठी है क्योंकि इसने हमारा साथ छोड़ देना है। इसे हमेशा के लिए अपना घर समझकर इसके हार श्रृंगार में नहीं फंसे रहना चाहिए, बल्कि जिस मकसद के लिए ये शरीर रूपी घर हमें बख्शा गया है उसको भी पूरा करना चाहिए। शरीर के अंदर बैठकर अपने असली घर को ढूंढने की कोशिश करनी है। स्वामी जी महाराज फिर फरमाते हैं झूठी माया, कि ये जो भी दुनिया के पदार्थ, धन दौलत, ठाट बाट, हाट हवेली देखते हो, ये भी झूठे हैं, ये भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर ये चीज़ें किसी का साथ देने वाली होती तो कभी हमारे हिस्से में आ ही नहीं सकती थी, लोग हमसे पहले ही इन्हें बुक करके पार्सल करके भेज देते। ये चीज़ें इसलिए आज हमारे नाम चढ़ी हुई हैं कि इन्होंने हमारे बुज़ुर्गों का साथ नहीं दिया। अगर इन जायदादों, हाट हवेलियों, ज़मीनों ने हमारे बुज़ुर्गों का साथ नहीं दिया तो ये हमारा साथ क्या देंगी। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, कितने लोगों का खून किया, कितने औरतों को विधवा और बच्चों को अनाथ किया, क्या इकट्ठा किया, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। उसकी ज़िंदगी का हाल पढ़ने से पता चलता है कि जब उसका अंत समय, मौत का वक़्त आया, तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि जो कुछ भी मैं हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूँ उसको एक खेमे में रख कर दिखाओ। जब पालकी में बैठकर उस सामान को देखने के लिए आया तो आ भरकर रोते हुए बोला कि जिस दौलत के लिए मैंने इतने जुल्म किए उसमें से आज एक टुकड़ा भी मेरे साथ नहीं जा सकता। हुक्म दिया कि मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, कि जो कुछ किया है उसका नतीजा तो भुगतूंगा ही, शायद दुनिया को इससे कुछ सबक मिल सके कि दुनिया की कोई चीज़ कभी किसी का साथ नहीं देती। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें शायद सारी दुनिया को ही साथ ले जाना है, हम हमेशा इसे अपना बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो धन दौलत है ये तो वृक्ष की छाया है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास, अगर इसे इकट्ठा कर भी लें तो ये कभी किसी के साथ नहीं जाती। फिर आप फरमाते हैं झूठा मन, कि ये हमारा मन भी झूठा है, ये हमेशा हमें धोखा देता है। क्या धोखा देता है, कि जिस दुनिया को नाश और फना हो जाना है उसे ही असल और सच्ची समझे बैठा है और इसी को दिन रात अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है।
झूठी काया, झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए, सत्संग सच्चा सतगुर सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँगा, मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए।
ऊपर स्वामी जी ने समझाया था कि काया झूठी है, माया झूठी है, मन झूठा है, क्योंकि ये हमें झूठी दुनिया में फंसा रहा है, हमें मालिक की सच्ची भक्ति की तरफ नहीं जाने देता। आप बताते हैं कि इस दुनिया में से कौन सी चीज़ सच्ची है। आप कहते हैं कि परमात्मा सच्चा है, जो कभी नाश नहीं होता, कभी मरण जन्मों के दुखों में नहीं आता। परमात्मा का नाम सच्चा है, शब्द सच्चा है, जिसके जरिए उस परमात्मा ने दुनिया की रचना पैदा की। ये दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। जब परले आता है तो पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि सोख लेती है, अग्नि को हवा उड़ा लेती है और हवा आकाश में समा जाती है। सारी दुनिया में धुंधुकार छा जाता है। केवल शब्द ही सच है, अनाद है, सदा रहने वाला है, और शब्द के आश्रय ही ये तत्वों की दुनिया चल रही है। आप कहेंगे कि शब्द के आधार पर इतनी बड़ी दुनिया कैसे चल रही है? ज़रा विचार करें कि ये जो हमारा शरीर है, ये भी पांच तत्वों का ही पुतला है। अपने अंदर शब्द की एक किरण यानी आत्मा के होने के कारण हम किस तरह दिन रात दुनिया में चल फिर रहे हैं। जिस दिन परमात्मा उस शब्द की किरण को हमारे शरीर से निकाल लेता है, ये पांच तत्व तो यहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर गल जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, हवा हवा में मिल जाती है। इस तरह हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हमारी हस्ती ही खत्म हो जाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर औपत होवे। परमात्मा ने नाम या शब्द के जरिए ही दुनिया की रचना की है, और जिस दिन परमात्मा इस शब्द की ताकत को दुनिया में से वापस खींच लेगा, ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वह शब्द सच्चा है, पवित्र और स्थायी है, क्योंकि वह कभी नाश नहीं होता, कभी फना नहीं होता। और क्या सच्चा है? सतगुरु सच्चे हैं, मालिक के भगत और प्यारे सच्चे हैं। वह शब्द या नाम में से आते हैं, शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं, और हमें शब्द या नाम से जोड़कर शब्द या नाम का ही रूप बना देते हैं। हमारा असली गुरु भी शब्द या नाम है, और गुरुमुखों का असली स्वरूप भी शब्द या नाम ही होता है। वाणी में आता है, गुरमूरत गुर शब्द है। गुरुमुखों का असली स्वरूप शब्द होता है, नाम होता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। हमारा असल गुरु शब्द है, नाम है। फिर गुरु रामदास जी फरमाते हैं, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। वह शब्द नाम या वाणी हमारा सच्चा गुरु है, और सतगुरु का असल स्वरूप शब्द नाम या वाणी है। परमात्मा के भगत और प्यारे मालिक की भक्ति शब्द की कमाई करके परमात्मा का रूप हो जाते हैं। वह हम जैसे होते हुए भी परमात्मा जैसे होते हैं। उनका परमात्मा से क्या संबंध होता है? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सलले सलल समाएंदा। मालिक के भगत देह में होते हुए भी मालिक का रूप होते हैं। समुन्द्र में दो चार मिनट के लिए एक लहर उठती है, वह वापस जाकर समुन्द्र में ही समा जाती है। जो चीज़ हम लहर के स्पुरद कर देते हैं, वह उसे साथ लेकर समुन्द्र की तह में बैठ जाती है। इसी तरह मालिक के भगत और प्यारे सतनाम समुन्द्र की लहरें होते हैं। जब हम उन पर भरोसा करके अपने आप को उनके स्पुरद कर देते हैं, वह हमें भी साथ लेकर वापस शब्द नाम या परमात्मा रूपी समुन्द्र में समा जाते हैं। वह मालिक के भगत यहाँ भी हमारे साथ होते हैं, अंदर रूहानी मंडलों पर भी हमारे साथ होते हैं, और अंत समय भी हमारे साथ होते हैं। वह हमें हमारे सच्चे परमात्मा से मिलाते हैं। इस तरह वह गुरुमुख या सतगुरु भी सच्चे हैं। वह गुरुमुख भी सच्चे हैं, उनकी संगत और सोबत उनका सत्संग भी सच्चा है। उनके सत्संग में जाकर ही दुनिया की असलियत का, काया की असलियत का, माया की असलियत का पता चलता है। उनकी संगत में जाकर ही पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट क्या है, और उस रुकावट को हम अपने रास्ते से किस तरह दूर कर सकते हैं। उनकी संगत में जाकर ही हमारे अंदर की झूठी दुनिया का झूठा प्यार निकलता है, और हमारे अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा प्यार जागता है। उनकी संगत में जाकर ही हमारा कर्म कांड में से, बाहर के वहमों भरमों में से ख्याल निकलता है, और हमें मालिक की सच्ची भक्ति का, शब्द या नाम की कमाई का तरीका या साधन पता चलता है। गुरमुख लोग या मालिक के भगत और प्यारे खुद शब्द या नाम की कमाई करते हैं, इसलिए उनकी संगत में जाकर हमारे अंदर भी अपने आप शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा हो जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि शब्द या नाम सच्चा है, गुरमुख सच्चे हैं, गुरमुखों की संगत, गुरमुखों का सत्संग सच्चा है। आप उपदेश करते हैं कि झूठी चीज़ों में से ख्याल निकालना चाहिए और सच्ची चीज़ों की ओर ख्याल को मोड़ना चाहिए।
मान बचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छुट जाए, नब चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए।
अब स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं कि हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसी तरीके और साधन के द्वारा हम सुरत शब्द का अभ्यास करके उस राधा स्वामी कुल मालिक से जाकर मिल सकते हैं, वापस जाकर उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ कि ये राधा स्वामी किसी कौम या मजहब का नाम नहीं है, ना ही स्वामी जी महाराज का ये मतलब था कि उनकी तालीम को किसी कौम या मजहब का रूप दिया जाए। मैंने शुरू में अर्ज की थी कि महात्मा कभी कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते। जिस प्रकार अन्य महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर उस परमात्मा यानी कुल मालिक के कई नाम रखे हैं, इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक को राधा स्वामी कहकर बयान किया है। स्वामी स्वामी तो उस परमात्मा को महात्मा अक्सर कहते ही आए हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं ऊंच अपार बेअंत स्वामी, लेकिन वह किसका स्वामी है? हमारी आत्मा का स्वामी है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने स्वामी शब्द के साथ राधा लफ्ज जोड़ दिया। राधा का अर्थ है आत्मा या रूह, राधा स्वामी का अर्थ है रूह का मालिक, आत्मा का स्वामी। ये कोई कौम या मजहब नहीं है, ये भी परमात्मा अकाल पुरुष वाहेगुरु का एक नाम है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम शब्द या नाम की कमाई के जरिए कुल मालिक से मिलाप कर सकते हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फायदा उठाकर शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें।
नब चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए।